அதுலதுல்
சுரமணு சிந்தவந்திதம் போதகாயகம் மமலம் பழமாமி வட்டமானம் தித்தம் தம்மஸ் கத்தாரம் அர்ஹந்த சித்த சூரி உபாத்யாய சாது சர் அர்த்த கே பிரகாசி மாங்கலிக உபகாரி இன்னோ ஸ்வரூப ஜான லாகதே பாயீ ஜோ ஆய கோ நாம ஆய ஸ்தோதி கோ மங்கள கல்யாண சுக சோஹம சாஹத்
प्रवचन सार परमात्म शास्त्र में परिशिष्ट में 47 नियम की चर्चा आचार्य अवधेश देव ने की है। उन 47 नियमों के स्वरूप पर संक्षेप में विचार करने का ये अवसर है। गुरुदेव के चिंतन में इन 47 नयों का स्वरूप कितनी गहराई से स्पष्ट था। और सबसे मार्मिक बात ये है कि इन 47 धर्मों का वर्णन करते हुए आत्महित का प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध होता है, इसका रहस्य उन्होंने बहुत अच्छी तरह खोला है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा तो हम भी धैर्य रखे रहेंगे। इसके सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ ही रहे होंगे। अपन को सप्तभंगी संबंधी जो नए हैं उनकी चर्चा आगे बढ़ाना है। आपके पास जो गुरु चिंतन की पुस्तक है उसमें पेज नंबर 34 पर अवक्तव्य नय का वर्णन है। एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान दिलाना है, जैसे पहला और बोल जो है वो एक धर्म युगल को लेकर के है, अस्ति नास्ति सत असत एक अनेक तत अतत नित्य अनित्य। और आप जानते होंगे इन परस्पर विरोधी धर्मों की चर्चा अकेले प्रवचन सार में ही नहीं समय सार में भी है, और दो दो तरीकों से है। 47 शक्तियों का वर्णन करने के पहले आचार्य देव ने स्यादवाद की शुद्धि के लिए जो परिशिष्ट प्रारंभ किया है उसमें 14 बोलों के द्वारा सर्वथा एकांत मत का खंडन किया गया है। और स्यादवाद के द्वारा उस अनेकांत की सिद्धि की है। तो 14 बोलों का वर्णन भी है और एक एक बोल के एक एक कलश हैं, तो ऐसे 14 कलश भी हैं। अपन को ऐसा लगता है कि समय सार में तो अकेला शक्तियों का वर्णन है और प्रवचन सार में नयों का वर्णन है। अरे नयों का वर्णन समय सार में भी कम नहीं है, फिर ये प्रकरण अलग है। पहला और दूसरा बोल धर्म युगल को लेकर है, तीसरा और चौथा बोल जो प्रचलित है बातें कि वो क्रम से कहे जा सकते हैं या नहीं कहे जा सकते, पहल में आए ना, तो क्रम से कहे जा सकते हैं भले वस्तु में एक साथ अविरोध रूप से रहते हैं, कहने में क्रम पड़ता है इस अपेक्षा भी तीसरे बोल का जन्म होता है, लेकिन युगपत नहीं कहे जा सकते। इस अपेक्षा से अवक्तव्य नय का जन्म होता है। देखिए आप 34 नंबर पेज पर आचार्य देव ने तो लोहमय और अलोहमय वाले बाण की बात चर्चा की है कि युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अवक्तव्य है। यह अंतिम पंक्ति है जो बोल्ड में लिखी है, युगपत स्वपर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अवक्तव्य है। अब इसके पॉइंट ले रहे हैं अपन। सभी धर्मों का कथन एक साथ नहीं किया जा सकता, इस अपेक्षा से वस्तु अवक्तव्य रूप है। और इसमें प्रश्न उठाया, ये तो वाणी कह नहीं सकते, तो ये आत्मा का धर्म हुआ कि वाणी की कमजोरी हुई? ख्याल में आया ना, भाषा तो ऐसी है, नहीं कह सकते तो सीधा सीधा प्रश्न होता है, ये तो आप में ताकत नहीं है तो आप नहीं कह सकते, जिसमें होगी वो कह देगा। सर्वज्ञ भगवान एक साथ ओम ध्वनि में पूरे द्वादशांग में जो प्रतिपाद्य विषय है सब कुछ कह देते कि नहीं कह देते? गणधर उसको क्रम से अंग पूर्वों में गूंथते हैं, लेकिन सर्वज्ञ देव तो अक्रम से कह ही देते। तो वाणी की सर्वज्ञ कहते हैं, ये उनकी वाणी का अतिशय है। हम नहीं कहते कह पाते हैं, ये हमारी वाणी की कमजोरी है। ऐसा एक समझ लो बात, शाम तो कमजोरी है, ये बात तो सही है, उसको आत्मा का धर्म क्यों बताते हो? ये देखने लायक बात है। यद्यपि इसमें वाणी की कमजोरी होने से वाणी की अपेक्षा आती है, परंतु संपूर्ण रूप से कथन नहीं किया जा सकता, ऐसी योग्यता वस्तु में है। वाणी का वाच्य वो है कि नहीं है, ये तो क्वालिटी वस्तु की है, ये धर्म, ये योग्यता। इसके लिए मैंने कुछ प्रयोग सोचे हैं। वस्तु को सर्वथा अवक्तव्य कहना भी स्ववचन बाधित है, यानी अवक्तव्य रूप योग्यता को तो बता ही रहे हैं, अवक्तव्य है इतना तो बता ही दिया, तो वक्तव्य हो गया, इसलिए स्याद अवक्तव्य लगाया जाता है। स्याद माने कथनचित अपेक्षा से। अब हम अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत प्रयोग करते हैं, फील करते हैं। देखो, तीर्थंकर के गुणों का वर्णन अथवा आचार्यों ज्ञानियों के उपकारों का वर्णन असंभव है। तुम गुण गण मणि गणपति गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे नमु त्रयोग संहार। हे भगवान, गणधर जैसे महान पुरुष भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते? तो इसमें बात तो यह है कि हम में वो सामर्थ्य नहीं है। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम। इसमें भी अवक्तव्य की झलक है कि मैं अल्पश्रुत हूं, मैं मेरे में ताकत नहीं है आपके गुणों का वर्णन करने की। तो ये गुणों की महानता भी तो है, तभी तो हमारी वाणी कमजोर पड़ रही है। रमेश भाई, जैसे बन गए थे गुरुदेव का हमारे ऊपर अनुपम उपकार है, अद्भुत उपकार है, उसे हम कह नहीं सकते हैं। समयसार स्तुति में भी अवक्तव्य नय का बढ़िया प्रयोग किया है। तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी, यानी हम वो सोने के पत्र पे और हीरे के अक्षर लिखें तो भी हम कुंदाचार्य के सूत्रों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, यानी उनका महिमा हम बता नहीं सकते। तो ये महिमा है, ये भी तो इससे साबित होता है कि नहीं? समझ में आया? तो उपकार इतना महान है, चाहे तीर्थंकरों का कहें, गणधरों का कहें, हमारे साक्षात उपकारी की अपेक्षा गुरुदेव का कहें, तो वो उपकार इतना महान है, उनने ऐसी अद्भुत चीज दी है, ऐसी अद्भुत क्रांति की है कि हम कहते भी हैं और ये भी कहना पड़ता है कि हम उसे शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो इससे अकेली वाणी की कमजोरी मालूम पड़ती है, ऐसा नहीं है। उस वाच्य भूत जो धर्म है उसकी भी विशेषता ऐसी है कि आत्मा में ऐसे अनंत धर्म एक साथ रहते हैं जो वाणी का विषय नहीं बनते और वे अनंत धर्म नहीं बनते, ये तो ठीक है, लेकिन अनुभूति में जो विषय जो आनंद आता है क्या वो वाणी से कहा जा सकता है? तो वो भी अवक्तव्य है। समझ में आया ना? अनुभूति का विषय भी अवक्तव्य है। अब वर्णन किया है हजारों पृष्ठों में ग्रंथों में, तो भी वो अवक्तव्य तो रह ही गया है इस तरह जितनी सामर्थ्य है उतना वर्णन करते हैं, तो भी जितना भावों में आता है, जितना अनुभव में आता है, अरे अवक्तव्य तो यहां तक चला जाता है। तो भगवान के ज्ञान में जो पद आया वो भी उनकी वाणी में नहीं आया। बहुत प्रचलित बात है, ये तो नई बात तो नहीं है। जे पद श्री सर्वज्ञ दीठू ज्ञान मा कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो ते रूप में अन्य वाणी ते सू कहे अनुभव गोचर मात्र ते ज्ञान जो अपूर्व अवसर वो प्यारे तो इस तरह मतलब ये अवक्तव्य ने बिल्कुल अचर्चित नहीं है। भाषा भले ऐसी हो कि अपन कम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसकी झलक आपको यदा कदा सब जगह मिल जाती है। एक लोक जीवन का भी मैंने उदाहरण इसमें रखा है कि कोई बच्चा यदि गलती करे, बिना पूछे सिनेमा देखने चला जाए और सूचना नहीं दे रहे और फिर 2 घंटा लेट आवे, और जो गंभीर प्रकृति के माता पिता होते हैं ना, खासकर पिता लोग, वो कुछ नहीं बोला उनने, तो वो और डर जाता है। वो ये सोचता है कि 2-4-10 मिनट डांट डपट लेते तो केस खत्म हो जाता, फाइल क्लोज हो जाती। अब इनने कुछ नहीं कहा, पिताजी इतने नाराज हैं कुछ नहीं बोल रहे, इतने नाराज हैं कि कुछ नहीं बोल रहे। आपने अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव किया होगा है कि जब आप किसी से बोलने ही बंद कर दो तो जिसके प्रति आप ये मौन रखा है वो उससे बहुत कुछ मैसेज मिल जाता है। कई चीजें तो ऐसी है कि हम कह के जितना नहीं कह पाते, नहीं कह के बहुत कुछ कह जाते। तो ये सब अवक्तव्य की उपयोगिता है, मौन में ज्यादा कहने की ताकत है। बाद के 3 भंग जो हैं, मैंने कई लोगों से पूछा भी, मैसेज भी दिया कि हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी चाहिए है। समुद्रभद्र जैसे आचार्यों ने भी शेष 3 भंग की यथा योग्य योजना कर लेना ऐसा कह के मतलब उनको संक्षिप्त तो उल्लेख मात्र किया है। चर्चा तो आती है परंतु बहुत ज्यादा विस्तार इसका नहीं आता है। थोड़ा सा संकेत नए प्रज्ञापन के आधार पर दादा ने नए चक्र में किया है डॉक्टर साहब ने। आप देखिए 35 पेज पर अस्ति अवक्तव्य धर्म से नाम तो मालूम है ना, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो एक तो नए प्रज्ञापन में एक और अर्थ मिला कि हम उसकी अस्ति बताएंगे तो भी पूरी तरह से नहीं बता सकते, इसलिए अस्ति के साथ अवक्तव्य भी लगा दिए। क्या रमेश भाई? अस्थि बताएंगे, वस्तु के अस्तित्व का कथन करेंगे तो भी जो जो कुछ उसमें वैभव है पूरा का पूरा नहीं कह सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य रह जाता है। ये एक अर्थ। अभी दूसरा, हमने अस्थि भी कह दिया और अवक्तव्य भी बता दिया। देखो, अस्ति अवक्तव्य धर्म से तात्पर्य है कि आत्मा का अस्तित्व बताया जाने पर भी नास्तित्व तथा नित्य अनित्यादि धर्म नहीं कहे गए। हमें बहुत कुछ कहना बाकी रह गया। हमें ऐसा लगता है आत्मा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा सत है, अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, तो पूरी बात हो गई, संपूर्ण कथन हो गया। अरे बहुत सारे अनंत धर्म युगल रह गए, विरोधी नास्ती भी रह गया, यही प्रयोग नास्ती में समझ लेना कि उसमें रंग राग और भेद से भिन्न है, चैतन्य है, अखंड है, ऐसा है। आज गुरुदेव के व्याख्यान में आया था, अभेद कहो, ध्रुव कहो, सामान्य कहो, एक कहो। तेरे को पता नहीं पंकज भाई, इस बात को खोजने का बहुत विकल्प रहता है कि गुरुदेव ने कहां कहां पे ध्रुव, अभेद, एक, सामान्य, अखंड ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग दृष्टि के विषय के लिए किया है। क्योंकि हमें आग्रह ऐसा बन जाता है किसी को अकेले ध्रुव शब्द में उसकी शक्तियां उछलती हैं, किसी की अभेद में उछल जाती हैं, तो हम पता नहीं क्यों एक एक शब्द के प्रति मोही हो जाते हैं। वो भी दर्शन मोह का एक स्वरूप है। इसलिए आप देखिए उनके चिंतन में वो विषय कितना क्लियर है। वह तो ये 12 गाथाओं का जो समयसार सिद्धि का पहला भाग है उस पर एक समरी लिखी है 52 पेज की। उसकी समरी लिखी कई लोगों की दी भी थी मैंने, जो 3-4 साल पहले यहाँ अनंत भाई का ऑफिस था उसमें काम चलता था। सब पॉइंट निकाल निकाल वो प्रवचनों में से ही पॉइंट निकाल के उनको कलेक्ट कर दिया था। तो ये अभेद, एक, सामान्य, ध्रुव। तो जब नास्ती से बात करते हैं, रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, समझ में आया, या मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, ये हुई अस्ति की बात। पर से कुछ भी संबंध नहीं, ये काय की बात हुई, कुछ भी संबंध नहीं, कर्ता कर्म नहीं, भोक्ता भोग्य नहीं, ख्याल में आया ना, स्व स्वामी पना नहीं, और यहाँ तक जाओ कि गेय ज्ञायक भी नहीं। इसको मैं अभी नहीं छेड़ता, ये जब इसमें आएगा सर्वगत असर्वगत वाला, तब इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसी तरह सातवें भंग में भी अस्ति नास्ति अवक्तव्य, देखिए लास्ट पैरा 35 पेज पे, यही स्थिति सातवें अस्ति नास्ति अवक्तव्य धर्म के बारे में समझना चाहिए। यदि क्रमशः अस्ति नास्ति दोनों धर्मों का वर्णन किया जाए तो भी वस्तु का संपूर्ण वर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नित्य अनित्य आदि अन्य धर्म युगल और ज्ञान आदि अनंत गुण वो अभी नहीं कहे गए हैं। किसी भी एक धर्म युगल से वर्णन करने पर भी उसी समय वस्तु अवक्तव्य भी रह जाती है। इस योग्यता का वाचक ये सातवां भंग है। इसको संक्षेप में जो कहा है उतने अपने लिए समझ लो प्रयोजन। भूते बाकी विशेष जानकारी चाहिए तो श्लोक वार्तिक है, वो सप्तभंगी तरंगणी है, आपको जिनेन्द्र सिद्धांत कोष में भी इसका विस्तार से वर्णन मिल जाएगा। अब देखिए 10वां और 11वां, विकल्प नय और अविकल्प नय। अपन लोग विकल्प से बहुत घबराते हैं ना, तो जिससे घबराते हैं उससे तो घबराने लायक है ही है। आत्मद्रव्य विकल्प नय से बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुष की भांति सविकल्प है। जैसे ज्ञान का स्वभाव सविकल्प है, वैसे आत्मा में भी भेद विद्यमान है। इसलिए आत्मा विकल्प नाम के धर्म को धारण करने वाला है। देखो एक बात है भाई, वस्तु का यथार्थ निर्णय वो फर्स्ट स्टेप है, और उसमें से फिर अपने प्रयोजन की सिद्धि करना वो सेकंड स्टेप है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि जब हम निर्णय करने की बात करते हैं तो अभेद, भेद, नित्य, अनित्य, एक, अनेक सब धर्म वस्तु में समान हैसियत से विद्यमान है। कोई अभेद एक नंबर का होवे और भेद दो नंबर का धर्म होवे, ऐसा बिल्कुल नहीं। भेद स्वभाव भी वस्तु में है। इसको अभी जब हम यहाँ प्रवचन सार का स्वाध्याय चलता था, अभी तक चला 3-4 दिन पहले तक, तो गाथा 106 में और 107 में असत भाव का वर्णन आया। बुद्ध उसमें बहुत खिले, बहुत प्रसन्न हुए। उत्पाद उत्पाद स्वभाव से है, व्यय व्यय स्वभाव से है, ध्रुव ध्रुव स्वभाव से है, और एक गुण का दूसरे गुण में असत भाव है। ऐसे वो चार अभाव की चर्चा आती है ना, तो वो तो एक पर्याय का भूत और भविष्य में अभाव, और एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव, उस एंगल से है। इन ज्ञान में श्रद्धा का सद्भाव है कि अभाव है? अगर दोनों सर्वथा एक हो जा रहे तो दोनों के लक्षण तो अलग अलग अपन जानते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, प्रतीति लक्षण, उपयोग लक्षण जानना, और दोनों के घातक कर्म भी अलग अलग हैं निमित्त रूप से, दोनों की विशुद्धि के गुण स्थान अलग अलग हैं, समझ में आया ना? तो वस्तु अनंत धर्मों का, अनंत गुणों का अखंड पिंड होते हुए भी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक धर्म दूसरे धर्म रूप नहीं होता। अरे वो तो ठीक है, गुण गुण रहता है, द्रव्य नहीं बन जाता। ये बहुत चर्चा चली यहाँ गाथा 106 107 वगैरह के प्रकरण में। गुण अगर द्रव्य बन जाए तो क्या होगा? तो द्रव्य निर्गुण हो जाएगा, क्योंकि गुणों ने तो द्रव्य का रोल अदा करना चालू कर दिया। वो तो द्रव्य की कुर्सी पे बैठ गए, तो गुणों की कुर्सी खाली हो गई तो क्या होगा? द्रव्य निर्गुण हो जाएगा, और निर्गुण द्रव्य का नाश हो जाता है, क्योंकि सत्ता नाम का गुण ही नहीं रहेगा तो वो टिकेगा कैसे? तो उसका नाश हो जाएगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा तो गुणों का भी नाश हो जाएगा। गजब बात। एक बाजू कहना गुणों का अखंड पिंड है, गुण भेद नहीं है, गुण भेद दृष्टि में रखने लायक नहीं है, है? वो प्रकरण अलग है। लेकिन यहाँ गुण गुण रूप से रहते हैं, पर्याय पर्याय रूप से रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप से रहता है, इस तरह तीनों का अलग अलग लक्षण है। ये विकल्प ने भेद को धारण करने की योग्यता, और वो ही समय अविकल्प ने से एक पुरुष मात्र की भांति अविकल्प, और उसमें भेद को तरोभूत कर दिया, यानी भेद रूप आत्मा रहे ऐसी योग्यता भी है, और भेद नहीं हो गए भेदों के बिना। देखो भेद माने विकल्प, ख्याल में आया? और भेद का अभाव निषेध करना उसका नाम है अविकल्प, है? तो यहाँ विकल्प ने और अविकल्प ने की बात देखो, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं 36 पेज पे। यहाँ विकल्प का अर्थ भेद है और अविकल्प का अर्थ अभेद है। ज्ञान की सविकल्पता और दर्शन की निर्विकल्पता में यही परिभाषा लगती, और जो अनुभूति में अपन निर्विकल्प पने की बात कहते हैं वो वास्तव में राग द्वेष को भी विकल्प कहते हैं। ध्यान में आए ना? तो अनुभूति में राग द्वेष नहीं होते, वो वितरण भाव स्वरूप है, ऐसी निर्विकल्पता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई साधर्मी भाई को मैंने पूछा कि आपकी टिकट कौन सी ट्रेन से है, कहाँ की? मैंने कहा बम्बई जा रहे ना आप? नहीं हम तो नहीं जा रहे, अभी तो हम 15 दिन यहीं रुकने वाले हैं। तो फिर कौन सी ट्रेन से टिकट का क्या सवाल खड़ा होता है? यानी वो उस मामले में निर्विकल्प, समझ में आया? एक बड़ा हास्यास्पद प्रकरण ख्याल में आता है, जब मैं समाचार एक बात सुन रहा था तो उसमें प्याज के भाव बहुत बढ़ गए, तो हम लोग इतने खुश हुए कि अपन कितने भाग्यशाली हैं। निर्विकल्प, अरे घटे बढ़े हैं उससे हमें क्या प्रयोजन है, समझ में आया ना? उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। राग द्वेष वो रिएक्शन है, और ज्ञान वो आत्मा का एक्शन है। ख्याल में आया ना? अच्छा है कि बुरा है, हो गया रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से जो अपन निर्विकल्प अनुभव की बात कहते हैं उसमें निर्विकल्पता राग द्वेष के अभाव वाली, ज्ञान तो सविकल्प ही रहता है। सविकल्प माने वस्तु को अपने विषय को भिन्न भिन्न जानता है, ये उसका सविकल्प स्वभाव। ऐसे आत्मा भी, आत्मा में जो अंश जिस रूप में है वो उस रूप में रहता है, ये उसका विकल्प नाम का धर्म का ना। बालक वृद्ध और युवा ऐसे पुरुष की भांति सविकल्प रूप, पुरुष में भेद करो। किसी से पूछोगे एक लड़का आया है तो कितनी उम्र है, ख्याल में ना, बच्चा है कि युवा है कि वृद्ध है, कौन सा पुरुष है क्या है, ये भेद की बात हुई। एक भेद को गौर करो तो अकेला जो पुरुष मात्र है, ऐसे ही आत्मा में योग्यताएं हैं भाई साहब। जिस प्रकार एक ही पुरुष बालक जवान और वृद्ध अवस्थाओं का धारण करने वाला होने से बालक जवान एवं वृद्ध ऐसे तीन भेदों में विभाजित किया जाता है, ये तो समझाने के लिए है। ऐसे भगवान आत्मा भी कितने तरह के भेद ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद करे मनुष्य देव नारकी त्रेंच इत्यादि पर्याय भेद समझ में आया। बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा 14 गुण स्थान ऐसे अनेक प्रकार के भेद रूप होवे भेद रूप परिणमित करे ऐसा उसका स्वभाव है। धर्म माने स्वभाव, गजब बात। स्वभाव का मतलब कोई त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की बात नहीं है, योग्यता रूप स्वभाव सर क्योंकि अपन लोग तो अध्यात्म रसिक हैं, वास्तव में गुरुदेव ने अपने को जन्म घुट्टी में ही अध्यात्म रस चखाया है, इसलिए जहाँ स्वभाव शब्द आया तो अपने को स्वभाव शब्द सुनते ही क्या है संसर्वट काल जावा घा पड़ी जाए, वचनामृत में आता ना ऐसा लगता है एक अद्भुत चीज। तो अपना तो उस स्वभाव से ही परिचय है, लेकिन भाई साहब उस स्वभाव के वो तो अपना समझ लो आलम्बन भूत है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय है, तो वो तो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी भी अनेक प्रकार के स्वभाव वस्तु में है ऐसा, तो ये भी योग्यता है। क्या बिना योग्यता के हो गया बहिरात्मा, बिना योग्यता के हो गया। आगे ऐसे बहुत से जोड़े आने वाले हैं जिनमें जैसे करती ने अकर्ती ने आएगा ख्याल में, और भी कई ऐसे धर्म युगल आने वाले हैं जिसमें आत्मा अपनी पर्याय रूप परिणमन करने की योग्यता रखता है, पर उसमें वो विकारी अविकारी का भेद नहीं किया। एक प्रसंग में आपको सुनाता हूँ, गुरुदेव के स्वयं के प्रवचनों में मैंने सुना है, प्रत्यक्ष भी सुना है, कि जब वो समय शिखर की यात्रा पर गए तो वहां और भी समझ लो समाज के दूसरे महत्वपूर्ण वक्ता त्यागी पुरुष वगैरह थे, तो इस बात पे मुद्दा बन गया कि वो कर्म के उदय से विकार होता है कि नहीं होता है। तो गुरुदेव तो अपना समझ लो दृढ़ता से बोला कि कर्म के उदय से विकार होता है बात बिल्कुल झूठ है, आत्मा अपनी योग्यता से विकार करता है। फिर जब वो कलकत्ते पहुंचे तो उनके पास ये मैसेज आया, हिसाब वो सामने वाले कहते हैं कि यदि कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा नहीं मानोगे तो विकार जीव का स्वभाव हो जाएगा, जैसे सुमेरु पर्वत गिर जाएगा या सिद्ध भगवान ऊपर से नीचे उतर के आ जाएंगे है, ऐसा मतलब बड़ा गजब हो जाएगा। उन्होंने सोचा होगा गुरुदेव को ये बात पता ही नहीं होगी, तो गुरुदेव ने यूं उड़ा दिया, अरे हाँ सुन वो उस पर्याय का स्वभाव ही है मतलब वो कितना बैलेंस उनके चिंतन में था, ये हमें खास करके सीखने लायक बात। जैसे अध्यात्म रस पिलाते हैं और वो सीखने लायक है, वैसे बैलेंस भी सीखने लायक। मुझे लालचंद भाई के शब्द जब वो जयपुर जाते थे तो बहुत याद आते हैं, ऐसे ऐसे सूत्र बोलते थे वो, क्या कि अनेकांत की लीला को बिरला ज्ञानी ही जानता है मैंने 3 नोटबुक भरी थी उनके प्रवचनों में से निकाल निकाल के, अनेकांत की लीला को बिरला ज्ञानी ही जानता है, और एक बोल ज्ञान मध्यस्थ होना चाहिए, ज्ञान जैसे तराजू का जो कांटा रहता है दोनों पलड़ों पर समान वजन रहेगा तो कांटा बिल्कुल मध्यस्थ रहेगा, मध्य में स्थित, ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा। गजब अहमपना ज्ञायक में लक्ष्य ज्ञायक का है, उपाधेय बुद्धि ज्ञायक की और ज्ञान मध्यस्थ है, तो उसका डिटेल भी करते थे, दृष्टि के विषय की खेच नहीं और पर्याय से द्वेष नहीं, ये ज्ञान की मध्यस्थता समझ में आया। तो इस तरह से तो उसमें योग्यता, बिना योग्यता के कौन सा काम हो सकता है ये बताइए, चाहे मिथ्यात हो चाहे अरे सातवें नरक जाने के लिए भी योग्यता चाहिए, कई प्रकार की चाहिए अकेले मोक्ष से योग्यता से जाया जाता है ऐसा नहीं। अपन लोग योग्यता का मतलब ये समझते हैं जैसे भाई कोई गवर्नमेंट की पोस्ट निकली तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एमए होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतनी उम्र होना चाहिए, एससी एसटी वाला होना चाहिए, दुनिया भर की योग्यता है, हैं? और फिर अपन को भाई अपन को सर्टिफिकेट ले आओ कहीं से, इनकम प्रमाण पत्र ले आओ, एमए का प्रमाण पत्र ले आओ, तो योग्यता साबित कर दो। अपने दिमाग में योग्यता शब्द से नजर वहां चली जाती है कि अपन प्रयत्न पूर्वक उस योग्यता को पैदा कर ले रहे, ख्याल में आया। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जिसे हम प्रयत्न कहते हैं वो हमारी मोहजन्य विकल्पना ही है। वास्तव में प्रयत्न प्रयत्न कुछ होता नहीं है, उसका भाव जरूर आता है लेकिन प्रयत्नों से कुछ होता नहीं। प्रयत्न माने इच्छा, क्या करेगा आत्मा किसी भी कार्य के लिए, क्या प्रयत्न करेंगे? और योग और उपयोग के अलावा, ख्याल में आया ना, और योग और उपयोग के भी कर्ता वास्तव में हम है नहीं। एक और मार्मिक बात कहता हूं कि जब क्रमबद्ध पर्याय की बात चलती है तो सामने वाला सीधा एक गोली दाग देता है तो पुरुषार्थ बेकार, तो हम क्या पुरुषार्थ करें? तो मैं उनसे पूछता, आप कौन हो पहले ये बता दो, आप अपने आप को क्या मानते हो? तो अपने आप को जो मानना चाहिए चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भाव रूप, वो मान के फिर पूछोगे हम पुरुषार्थ करें कि नहीं करें, तो समझ में आ जाएगा है? हो गया पुरुषार्थ। और अगर अपने आप को हम मानते असमान जाति पर्याय वाला, हम मानते अभय कुमार, हम जानते मनुष्य, हम मानते पंडित, हम मानते डॉक्टर, फिर हम चाहते हम डॉक्टर हैं तो क्रमबद्ध में अपने आप मरीज कैसे ठीक हो जाएगा? वो भी पुरुषार्थ करेगा और हम भी करेंगे और उसका उदय भी साथ में आएगा, तो मूल में मान्यता ही गलत हो गई, ख्याल में आया ना। तो यहाँ जो योग्यता की बात है वो उस पर्याय में उस विवक्षित भाव रूप प्रणमन करने का स्वभाव, इसका नाम योग्यता है। तो इस तरह ये आत्मा में एक विकल्प नाम की भी योग्यता है और एक अविकल्प नाम की भी योग्यता है। विकल्प नाम की योग्यता से वो भेद रूप देखा जाता है, भेद पने रूप होता है। अब भेद एक धर्म है, भेद की क्या पर्याय? उत्पाद भेद रूप उसकी क्या पर्याय होगी? भेद है तो है, समझ में आया ना। उसके बारे में सोचो कि कोई जैसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है या अनादि से मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे भेद तो स्वभाव है, वो तो धर्म है। उस रूप तो वस्तु अनादि अनंत है ही है, उसमें नया कुछ होना हो, कि उत्पाद व्यय होना हो, कार्य होना हो, ऐसा है ही नहीं। भेद धर्म रूप वस्तु का होना ये ही उसका कार्य है, समझ में आया? शायद कल मैंने चर्चा की होगी या परसों, कि सरकार ने 5 साल तक क्या किया, वो चल गई यही बहुत है। एक बार यहाँ आई थी ये बात कि निष्क्रिय क्या करता रहता है, गजब है। एक तरह आप निष्क्रिय भी कह रहे और फिर क्या करता है ये भी पूछ रहे, अरे निष्क्रिय का क्या काम है? कि तुम निष्क्रिय रहो घर में, समझ लो पिताजी हैं 80 बरस के हैं, 85 बरस के हैं, अब वो कुछ हाथ पैरों से तो चलने लायक है नहीं, और डिसीजन पावर अपन ने उनसे छीन लिया है, अपन ने उनको दिया नहीं है। अब बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, अब पिताजी को बेटा कोई भी हमारे लायक काम हो तो आप बता देना, तो आप यहाँ दरवाजे पे बढ़िया सज धज के अच्छा बढ़िया धोती कुर्ता पहन के बैठ जाओ, और जो आए तो उससे जय जिनेन करो, उसका सम्मान स्वागत करो, अब बैठे रहो आशीर्वाद देते रहो सबको, यही आपका काम है। तो वो निष्क्रिय निष्क्रिय बना रहे, सक्रिय होने की चेष्टा ना करे, यहाँ तक कि वो सक्रिय को छुए भी नहीं, समझ में आया? ये उसका स्वरूप है। तो भेद भेद रूप रहता है, इसको अपन कह सकते हैं भेद का काम है, कहने की बात ठीक है। ऐसे अभेद अभेद धर्म है, अब उसकी क्या पर्याय, क्या उत्पाद, क्या उत्पन्न होगा उसमें, ख्याल में आया ना। तो जो ज्ञान दर्शन इत्यादि का भेद है अथवा गुण भेद पर्याय भेद है, वो ज्ञान दर्शन इत्यादि एक वस्तु मात्र है, ऐसी भी उसमें एक योग्यता है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है, ऐसा उसका धर्म है, ख्याल में आया ना। तो ये विकल्प धर्म और अविकल्प धर्म की बात हुई। इसके बाद नंबर आता है नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने और भाव ने। ये तत्वार्थ सूत्र में ये सूत्र आता है, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास, उसका कथन वस्तु का कथन आप नाम से कर सकते, स्थापना से कर सकते, द्रव्य ये भी एक द्रव्य ने आया, ये देखने लायक बात, पहले भी एक द्रव्य ने था, अब ये भी एक द्रव्य ने आया। इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे, तो उसमें नए प्रज्ञापन में भी है, सब है। मैं इसका आपको 39 नंबर का पेज निकालिए, 38 के नीचे और 39 पे। एक व्यक्ति का नाम जिनेंद्र शब्द के ऊपर चार नए लगाए हैं। देखो, आत्मा को आत्मा नाम दिया कि नहीं आचार्यों ने? आत्मा शब्द तो आत्मा में है नहीं, बात समझ में आती कि नहीं? एक बार मैंने यहां कहा था, आत्मा में आत्मा का अत्यंत अभाव है। क्या बोला? आत्मा में, अरे गजब हो गया, हमने तो सुना था शरीर का अत्यंत अभाव है, विकल्पों का अत्यंत अभाव है, हम तो पर्याय का भी अत्यंत अभाव मानने तैयार हैं। इन आपको कह रहे, आत्मा में आत्मा का अत्यंत अभाव है। भाई साहब ने कही थी दो दिन पहले ये बात, उत्तम सिंह जी साहब ने, वस्तु के रूप तीन प्रकार के, शब्द ने, अर्थ ने, ज्ञान ने, है ना? तो आत्मा शब्द से जिस वस्तु को कहा गया है, चैतन्य स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, अनंत शक्तियों का पिंड, वो आत्मा, अर्थ, अर्थात्मक आत्मा, उसमें आत्मा शब्द का अत्यंत अभाव है कि नहीं? शब्द तो वाणी है, तो हो गया आत्मा में आत्मा का अत्यंत अभाव हो गया। लेकिन भैया, पहला वाला आत्मा अर्थात्मक है, दूसरा वाला आत्मा शब्दात्मक है, और एक और आत्मा है जो ज्ञान में आत्मा का प्रतिबिंब झलक रहा है, वो ज्ञानात्मक आत्मा है। ख्याल में आया ना? तो नाम नए नए आत्मा के बारे में कहने के रास्ते खोले। यदि नाम वाली व्यवस्था ना होती, थोड़ा एक मिनट 37 पेज पे देख लें। आत्मा आत्मा शब्द से वाच्य होने की योग्यता रखता है। वाच्य धर्म आत्मा में है, वाचक धर्म शब्दों में है। ख्याल में आया ना? शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, ऐसा मंगलाचरण में है। तो आत्मा आत्मा शब्द से वाच्य होने की योग्यता रखता है, इस योग्यता को नाम धर्म कहते। ये आत्मा का धर्म है, गजब बात। शब्द का तो अत्यंत अभाव है, लेकिन शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है? आप कल्पना करोगे, सर्वथा यदि वो न कहा जा सकता होता तो ये द्वार सांग कहां से आता? दिव्य ध्वनि क्यों आती? हम कैसे कहते कि मैं तुम्हें एकत्व वक्त आत्मा दिखाऊंगा, और शिष्य कैसे पूछता कोसो आत्मा इति चेत? समझ में आया ना? तो इस तरह ये नाम नय की उपयोगिता है। ऐसे स्थापना नय का तो अब प्रसिद्ध है ही, इसका तो गुरुदेव बहुत व्याख्यान करते हैं। जिन बिंब है, जिन प्रतिमा, जिन सार की कही, जिनागम माए, एक अतदाकार स्थापना भी होती है। ये तो तदाकार है जिनेन्द्र भगवान की। और शायद रत्नगंध रावचार में एक बात आती है कि इस काल में अतदाकार स्थापना जिनेन्द्र भगवान की नहीं होनी चाहिए। सुपारी में आत्मा मान लिया था, वो नहीं चलेगा। लोक में इसका प्रयोग होता है अतदाकार का। किसी ने आपको पेन गिफ्ट दे दिया, तो पंडित जी आप लिखते हो ना, आप ये पेन से लिखना। वो इतने महंगे होते लेकिन किसी काम के नहीं होते, एक तो फिसल जाते, समझ में आया ना? लेकिन जब आप इससे लिखोगे तो हमारी याद आएगी। गजब हो गया, जो लिखना है वो भूल जाएंगे, तुम्हारी याद करेंगे, क्या फायदा इससे? लेकिन ये जो गिफ्ट देने की जो परंपरा है, किन्ने रुमाल दे दिया, पेन दे दिया, गुलाब का फूल दे दिया, फलानी चीज दे दी, शर्ट दे दी, तो उसमें देने वाले की फोटो तो छपी नहीं है, तदाकार तो है नहीं, लेकिन उसने दी थी, ऐसा करके याद आ जाती है। तो ये एक अतदाकार का प्रयोग है। अरे ग्रंथों में तो यहां तक आता है कि पुद्गल पिंड में आत्मा की स्थापना करके उसे भी आत्मा बोला जाता है। ये जो पंचेंद्री जीव, ये पुद्गल में आत्मा की स्थापना है। पंचेंद्री कौन होता? आत्मा के शरीर, शरीर। और अपन ने किसको आत्मा बोला? पंचेंद्री जीव। ऐसे प्रयोग है सब इसमें। तो ऐसी भी आत्मा में योग्यता है कि उसको पुद्गल पिंड में स्थापित करके समझा जाए, कहा जाए। ख्याल में आया ना? अभी द्रव्य नय, ये द्रव्य नय का एक बड़ा विचित्र प्रयोग है, त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है। भूत भविष्य की पर्यायों से उसकी पहचान करना, ख्याल में आया ना, राजा के पुत्र को अभी राजा के रूप में देखना, तो इस रूप में उसका परिचय तो दिया जा सकता है लेकिन उसका वैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो पक्का हो जाए, अमेरिका में तो इस सिस्टम में दो दो चार चार महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो उसको पावर मिल जाता है, तो उसको उसी पे बैठ के साइन कर सकता है। वो तो एवं भूत नय से या भाव नय से, समझ में आया, वो पावर तो तब मिलेगा, लेकिन उसमें एक ऐसी योग्यता है कि ये पहले इस रूप में था ऐसा वर्तमान में हम जान लें, या भविष्य में इस रूप में होगा ऐसा वर्तमान में हम जान लें। तो इसमें अंतर बताया है दोनों का। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए 38 पेज पर, पहला द्रव्य ने कहा गया था जो आत्मा को सामान्य चैतन्य मात्र देखता है, और ये द्रव्य ने आत्मा को उसकी भूत भविष्य की पर्याय के रूप में देखता है। इसमें द्रव्य ने कहां से आ गया, पर्याय से, पर्याय नहीं बोलो ना, भूत पर्याय ने, भूत निगम ने तो है ही, इसमें द्रव्य ने कैसे आ गया कि वो भूत और भविष्य की पर्याय में यही द्रव्य विद्यमान है। जो द्रव्य वर्तमान में विद्यमान है वो ही भूत की पर्याय रूप परिणमा था, और वो ही भविष्य में इस पर्याय रूप परिणमेगा, तो उसका समझ लो पर्यायों के माध्यम से भी हम उसकी त्रिकालिक सत्ता को स्वीकार करते। वो विषय आज चल गया दोपहर में, बहुत द्रव्य रूप से पड़ी है, पड़ी है, देखो कहने की भाषा है, कोई गोदाम में जैसे वो गेहूं की बोरियां पड़ी रहती हैं, एक एक उठ के प्रकट होती जाती है। पर्याय किस रूप में पड़ी है इसकी एक सिचुएशन आपको बताता हूँ। ये जो ऑटोमेटिक सीढ़ी होती है ना एयरपोर्ट वगैरह पे, क्या बोलते हैं उसको, आप सबको पता है, तो उसमें जो पट्टी अंदर चलती है वो सीढ़ी के शेप में नहीं रहती, सीढ़ी तो समझ लो ऐसे शेप में रहती है, ख्याल में आए ना, उल्टा एल शेप में, तो वो बाहर निकलती है तब वो एल शेप में आती, और अंदर रहती तो प्लेन रहती, तो छोटा छोटा प्लेन स्वरूप उसका पहले भी रहता है पैर रखने के लिए, ख्याल में आया ना। तो योग्यता का अर्थ ये है, बहुत अच्छा ये बात आ गई थी आज, बहुत बढ़िया खुलासा आया कि द्रव्य, यही द्रव्य इस रूप परिणमा था और यही द्रव्य इस रूप परिणमेगा, ऐसी गारंटी। और एक विवक्षा वो है, केवली के ज्ञान में तो सब पर्याय अपने अपने स्वकाल में ऐसी दिखती हैं जो वर्तमान में ही हैं, समझ में आया, वो विवक्षा दूसरी है। और एक ऐसी योग्यता है आत्मा में कि उसको उसकी वर्तमान पर्याय के रूप में ही जाना जाए, जब वो व्यवहार वर्तमान के हिसाब से होता है, आप वर्तमान में जिस कंडीशन में हैं, जिस स्टेटस में है, वैसा व्यवहार होगा। जैसे कोई राजा का बेटा है या मंत्री का बेटा है, वो पक्का है, लोगों को मालूम है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अब बने नहीं बने तो अलग बात है, ख्याल में आया ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको वो पावर दे दें। मैं एक बात कहता हूँ, तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के समय इंद्र क्या करता है, सुमेरु पर्वत पर ले जाएगा, जन्माभिषेक करेगा, तांडव नृत्य करेगा, तो जन्म का आनंद मनाता है, जन्मोत्सव मनाता है, उस वो उसी समय क्या समोसरण की रचना नहीं कर सकता, कौन रोक सकता है। हम तो एक कोई बालक कोई बिठा लो समोसरण में, और अतिशय तो देवों को ही करना है दिव्य ध्वनि का, तो बालक को बिठा के उसकी दिव्य ध्वनि खिला दो, क्या फर्क पड़ता है इसमें, नहीं, वो भावने से, वो वर्तमान से, वर्तमान में बाल अवस्था में है तो बाल अवस्था जैसा व्यवहार होगा, जबकि पक्का है कि ये जीव इसी भाव में तीर्थंकर होने वाला है, तभी तो इतने नाच कूद रहे, आनंद तो उसी का है कि धन्य है ये भाव का अभाव करने वाला जीव आया है, और ये लाखों जीवों को अपनी, तो इंद्र सभा वगैरह में ये डायलॉग भी आता है कि क्यों इसमें इतना जन्मोत्सव में क्या आनंद मनाने की बात, वो तो शरीर का जन्म होता है, अरे ये जन्म मरण का अभाव करेगा और हमको भी उसका मार्ग बताएगा, तो लक्ष्य तो वहीं का है, लेकिन वो क्रिया नहीं हो सकती अभी, समझ में आया। उसको आप कमल आसन पर नकली समोसरण विराजमान करके, इंद्र तो असली बनाएगा, तो उन पर वो बालक को नहीं बिठा देता। ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखने की बात है। तो आत्मा को उसकी वर्तमान पर्याय के रूप में जाना जाए, ऐसी योग्यता को भाव नाम का धर्म कहा जाता है। डॉक्टर पूजा कर रहा हो तो उसे डॉक्टर कहना द्रव्य नय है और पुजारी कहना भाव नय। एक जिनेंद्र के नाम से इसमें वो बहुत अच्छा प्रयोग है। जिनेंद्र नाम के व्यक्ति को जिनेंद्र कहना, ये नाम नय हो गया। अंतर्मुख वीतरागी प्रतिमा को जिनेंद्र कहना, ये क्या हो गया, ये स्थापना नय हो गया। मुनिराज को जिनेंद्र कहना, अपने आप शैली आचार्य भगवान, कुंदकुन्नाचार्य भगवान क्या कहते हैं, अरे गजब है। एक बार किसी अनजान व्यक्ति ने मेरे से पूछा भी था कि वो तो अभी अरंत हुए नहीं, वो तो आचार्य थे, तो अपन भगवान क्यों कहते हैं, द्रव्य नय से कहते हैं। वो तो अपन सम्मान से कहते हैं, भगवान की वाणी बताने वाले हैं, है ना। लेकिन मुनिराज को जिनेंद्र कहना ये द्रव्य नय है, और जिनेंद्र भगवान को जिनेंद्र कहना ये भाव नय। तो ऐसी योग्यताएं भी वस्तु में है, और इनके प्रतिपादन की विभिन्न शैलियां हम समझ ले रहे हैं। तो कोई जिनेंद्र नाम के व्यक्ति को जिनेंद्र कहे तो इसमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, ऐसी इसकी योग्यता है कि जिनेंद्र नाम से पहचाना जा रहे। तो इन धर्मों को इस रूप में समझना चाहिए। समय भी अपना हो गया, आगे के धर्मों की चर्चा यथा समय यथा क्रम अपन करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं।